प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 गुरुवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ऊंचे से ऊंचा परमपिता। परमपिता है तो किसका वो बाप है? परमपिता है ऊंचे से ऊंचा बाप तो किसका बाप है? मनुष्यों का बाप है या आत्माओं का बाप है? आत्माओं का बाप ऊंचे से ऊंचा। सभी आत्माओं का बाप माना, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे सबका बाप है। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप, परंतु बाप तो कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, और फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर के मिलते, और बाप उसे कहा जाता है जिसे जन्म मिले, जिसे वर्षा मिले, जन्म ही न मिले, वर्षा ही न मिले, कोई प्रॉपर्टी न मिले तो बाप किस बात का? तो आत्माओं का बाप है। आत्मा संपूर्ण स्टेज को आत्मा कहें या आधा देह बांध रहे आधी आत्मिक स्थिति रहे तो आत्मा कहें है? तो जो पशु पक्षी हैं उनमें तो आत्माभिमान की बात ही नहीं, क्योंकि उनको तो आत्मा का परिचय भी नहीं मिल सकता। मनुष्य आत्माओं को परिचय मिल सकता है, मिलता है, परंतु क्या वो आत्मिक स्थिति में टिकती हैं? सब टिकती हैं। तो कितनी आत्माएं हैं जो आत्मिक स्थिति में टिक जाती है, है? 4.5 लाख है। तो वास्तव में जो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो आत्मिक स्थिति में टिक जाती हैं, देह भान नहीं रहता, उन्हीं का बाप हुआ ना। जो आत्मा बनते ही नहीं, वास्तव में उनका बाप है क्या? है? जब आत्मा अविनाशी गाई जाती है या विनाशी गाई जाती है, तो अविनाशी किस आधार पर गाई जाती है? 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाए तो अविनाशी आत्मा, और 84 जन्मों का पूरा पार्ट न बजाए, 84 जन्मों में 5000 वर्ष में पूरे 84 जन्म ही न ले, तो आत्मिक स्थिति वाली अविनाशी आत्मा के हैं? अविनाशी पार्ट है? नहीं, पार्ट का ही विनाश हो गया। रही सुप्रीम सोल की बात, जिसे आत्माओं का बाप कहा जाता है, ऊंचे से ऊंचा बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो तो तुरीय है। वो इस सृष्टि पर आता भी है तो भी कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कोई बच्चा 100% भी आप समान बनता होगा? बाप समान नहीं बनता होगा। जो बच्चा बाप समान बनता है तो उसका पार्ट तो बता दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। माने शिव ने आकर के जो आप समान रचना रची उसको शिव बाबा कहा। वो शिव बाबा भी तब है जब आत्मिक स्थिति पूरी धारण करे, 100% आत्मिक स्थिति। ऐसी आत्मिक स्थिति जिसको 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं मान जाए, और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप से कोई न कोई रूप से मिलन मेला जरूर मनाए, दृष्टि से, कानों से सुनकर, मुख से बात करके, या कोई भी इंद्रियों से कनेक्शन जोड़े। ये सभी इंद्रियों से कनेक्शन जोड़े जिसे सर्व संबंध कहा जाता है, परंतु वो मिलता जरूर है, और मिलता है तो आगे पीछे पहचानने वाले पहचानते भी हैं, परंतु संपूर्ण कोई नहीं पहचान पाता। इसलिए इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही है, या जो भी नंबरवार पहचानने वाले हैं वो सभी हैं, है एक ही है। जो एक है वो ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का वारसदार, क्योंकि कोई भी प्रकार की परंपराएं जो चली हैं दुनिया में, खास करके भारत में, फिर आम दुनिया में, वो परमपिता के द्वारा ही चली। परमपिता शिव आते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का वर्षा बड़े बच्चे को देते हैं। बड़ा बच्चा जो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है वो क्या प्रॉपर्टी पाता है? आत्माओं के बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? अकूट ज्ञान। ऐसा अकूट ज्ञान जिसमें से सारा का सारा निकाल दिया जाए तो भी संपूर्ण बचता है। ऐसा अकूट ज्ञान का भंडार पाने वाला बड़ा बच्चा वो ही अविनाशी आत्मा हुई। ऑलराउंड पार्टधारी जिसका षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज गाया हुआ है और होता भी है प्रैक्टिकल में। उस बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। उस झाड़ में कोई पहले पहले पत्ते, कोई बाद के पत्ते, कोई मध्य के पत्ते, तो वो सभी आत्माओं का बाप है। सभी माने 4.5 लाख का के सभी आत्माओं का 4.5 लाख। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्म पिताएं हुए, उन बापों का बाप कोई नहीं है, है? है? तो जो उनका भी बाप है, ग्रेट फादर्स जिन्हें कहा जाता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को, तो उनसे जन्म मिलता होगा ना, वर्षा भी मिलता होगा ना। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है उसका वर्षा है ज्ञान, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उस मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा है जीवन भी रहे और जीवन में रहते मुक्त भी हो जाए। जो सुप्रीम सोल बाप है वो जीवन में रहता है? नहीं रहता। जो खुद ही नहीं रहता वो दूसरों को वर्षा भी नहीं दे सकता। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनायर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमींदारी का वर्षा देगा। ऐसे ही जो जीवन वाला है, संपूर्ण जीवन इस सत्य रूपी रंगमंच पर, कितना जीवन संपूर्ण माने पूरे 5000 वर्ष का ऑलराउंड जीवन जो गाया हुआ है, क्या कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं खा सकेगा। ऐसा अकाल मूर्त, वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, और उसका वर्षा है जीवन मुक्ति। तो क्या जीवन मुक्ति 500-700 करोड़ को मिलती होगी? है? जब बाप है तो बाप का वर्षा सबको मिलना चाहिए कि नहीं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होते हैं तो बाप की उन बच्चों के ऊपर ज्यादा लगन जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी को ज्यादा सुरक्षित करके रखेंगे, हमारा नाम बाला करेंगे। जो बच्चे निठल्ले होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, जैसे बहुत ढेर सारी आत्माएं हैं जो परमधाम में पड़ी रहती हैं, कलयुग के अंत तक पड़ी रहती हैं, थोड़े समय के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, आती भी है तो काम बिगाड़ती है या बनाती है, बिगाड़ देती है। तो ऐसे बच्चों को औरों के मुकाबले जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम ही मिलेगा। बाकी एक जन्म का वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता सबको है, चाहे वो 500 700 करोड़ में से पहले नंबर की आत्मा हो, पहला पत्ता हो, चाहे सस्य रूपी वृक्ष का लास्ट पत्ता हो। तो बताया जिसको अभी हम याद करते हैं, किसको? बाबा को, शिव बाबा को या बाप को? शिव बाबा को याद करते हैं। बाकी दुनिया में बाबा हैं तो बहुत हुए, जिन्हें ग्रैंडफादर कहा जाता है। और ग्रैंडफादर का वर्षा सबको मिलता है बच्चों को, बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा हमारे याद करने की चीज है। आत्माओं का बाप याद करने की चीज नहीं है, है? आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए, है? नहीं चाहिए। हम साकार हैं तो साकार को साकारी वर्षा चाहिए। तो जो साकारी वर्षा पाने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो शिव बाबा से वर्षा पाती है। शिव का वर्षा है निराकारी, क्या चीज? ज्ञान। वो निराकारी वर्षा वो पाता है जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनी हुई है। गोल पत्थर और बीच में हीरा। आत्माओं का बाप शिव कहते हैं, मैं पत्थर बुद्धि कभी नहीं बनता हूं, और हीरा, हीरा पत्थर होता है या नहीं? है? होता है। नवरतन, जो नवरतन गाए हुए हैं, वो नवरतन पत्थर बनते हैं या नहीं? माना शिव बाप ऐसी तुरीय आत्मा है जो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनती। बाकी मनुष्य आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो 8-9 ग्रह के रूप में गाए जाते हैं, अष्ट देव के रूप में गाए जाते हैं, शिव की अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं, जो शिव शंकर के सर के ऊपर रखी हुई दिखाई जाते हैं आठ मण के, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है। हर धर्म में मान्य, और वो भी उसी एक को याद करती है। किसको? शिव बाबा को याद करती है। शिव बाबा से वर्षा पाती है, बड़े से बड़ा वर्षा जीवन मुक्ति का। तो जो बड़े से बड़ा वर्षा जीवन मुक्ति का पाती है, वो कौन से धर्म वंश की होंगी? सूर्यवंशी होती है। जिन सूर्यवंशियों के लिए कहा है कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा किसे कहा है? जब बाप आते हैं तो जिन बच्चों के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठते हैं, मुकर्रर शरीर का आधार लेकर के, उन बच्चों को बोला। जो बच्चे वो सुप्रीम सोल बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल मुकर्रर शरीर के साथ बैठते ही नहीं, उनको तुम बच्चे नहीं बोला। ये बच्चा और इस बच्चे के फॉलोअर बच्चे, वो बच्चे और उनके फॉलोअर बच्चे, क्या अंतर हुआ? तुम बच्चे, ये बच्चा, वो बच्चे, क्या अंतर हुआ है? तुम बच्चे माने ज्ञान सूरी के डायरेक्ट बच्चे, ये जिसे बाजू में बैठा दिया वो ब्रह्मा बच्चा, उनके फॉलोअर से भी ये बाजू में, और वो दूसरे धर्म के बच्चे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि के बच्चे। तो और धर्म की जो आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, वो उतना सुख नहीं भोगती जितना जीवन में रहते जीवन मुक्ति का वर्षा तुम बच्चे भोगते। यहाँ तक बोला कि तुम सृष्टि में तीन हिस्सा सुख भोगते हो और एक हिस्सा दुख भोगते हो, और दूसरे धर्म की आत्मा आधा सुख आधा दुख भोगती है। तुम बच्चों में कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, दुखी अनुभव करने की बात ही नहीं उनके लिए। तुम कौन बच्चे होंगे? है मुसलमानों में भी गाए जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी माने जाते हैं, भारत में आर्ष देवों का गायन है ही। तो वो आठ सूर्यवंशी आत्माएं हैं, है नंबर बार जो बड़े से बड़ा वर्षा जिसे कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट, दिग्पाल जिन्हें कहा जाता है, दिग माने दिशा, पाल माने पालने वाले, चार दिशाएं तो हैं सब जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार उनके कोने, आठ और ऊपर और नीचे, पाताल लोक, ऊपर, वहां तो आत्माओं का लोक है, वहां कोई जीवन की बात नहीं। उस परम धाम में तो आत्माएं जड़वत रहती है। तो नौ दिग्पाल बचे, वो ही नवग्रह के रूप में गाए जाते हैं, अंगूठी पहनते हैं तो भी आठ के बीच में हीरा डाला जाता है। तो बताया सभी आत्माओं का जो बाप है, जो वो कहते हैं ना कि सभी भाई भाई हैं, कौन कहते? कहते हैं तो झूठ कहते हैं या सही कहते है? अरे कभी तो भाई भाई रहे होंगे, एक बाप के बच्चे रहे होंगे, बाप होगा तो भाई भाई रहे होंगे। बाप प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो भाई भाई कहां से हुए? जिसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये कब की बात है? सतयुग की बात है, त्रेता की है, द्वापर की है, या कलयुग के अंत की बात है? हाँ, कलयुग के अंत में जो स्वर्णिम संगम आता है, जहाँ बाप आकर विश्व की बात सही देते हैं, उसमें सारा विश्व धर्म समा जाता है, सभी विश्व धर्म की आत्माएं एक झंडे के नीचे आ जाती है। तो वो सारी वसुधा एक कुटुंब कही जाती है। और कुटुंब भी कैसा, राज्य भी कैसा, यथा राजा तथा प्रजा, मन रोटी और कपड़ा और मकान के बारे में कोई भी दुभाते नहीं हो सकती, पक्षपात नहीं हो सकता। कोई कैसे भी बच्चे हैं, उसे छत्र छाया में रहने वाले बच्चों को वो अनुभूति जरूर होनी है, थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो। तो सभी भाई भाई हैं। अरे भाई भाई, भाई भाइयों के रहने का स्थान कहाँ है? भाई भाई जो पैदा होते हैं उनकी पैदाइश कहाँ उसे होती है? हैं? बाप से पैदाइश होती है, तो कहाँ रहने का मूल स्थान है उनका? हैं? बाप का घर कौन सा? परमधाम। वो आत्माओं का बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। हाँ, तो इसे सृष्टि पर वो परम धाम की स्टेज में पहुंचने वाले बच्चे नंबरवार होंगे या सब एक साथ पहुंच जाएंगे? तो पहले नंबर में कौन होगा? अरे कोई होगा कि नहीं होगा, कौन है? पहले नंबर में वो ही हो सकता है जिसने शिव बाप से, आत्माओं के बाप से ज्ञान का पूरा वर्षा लिया है। क्या पूरा वर्षा क्या होता है? ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो बोला वो पूरा वर्षा नहीं है। अरे जल्दी बताओ ना, मैं पूरा वर्षा नहीं है, पूरा वर्षा इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित रहा, लेकिन बुद्धि में बैठा किसी को नहीं, समझा ही नहीं किसी न बाप को जाना प्रैक्टिकल में, बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि का, ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे 68 जनवरी तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने पहचाना कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? है नहीं पहचाना ना, कब पहचाना? मनुष्य सृष्टि के बाप के बारे में कब से पहचान होना शुरू हुई? जब बोला कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, क्योंकि पहले ही बता दिया था 10 साल पहले इस सृष्टि, वो लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो जो नारायण वाली आत्मा है वो 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। अब नारायण वाली आत्मा कौन? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है, जो डायरेक्ट नारायण बनती है वो है बाप, जिसको बोला है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बाप वाली आत्मा है उसके लिए कहा और पूछा भी बच्चों से, तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है? तुम बच्चों के रहने का स्थान कहाँ है? तुम जब देवान को भूल जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, तो तुम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? पारब्रह्म में बास कर। हाँ, भारत का मतलब ये है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, चाहे मनसा से, वाइब्रेशन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, जो भी कर्म करता है वो कर्म ज्ञान युक्त कर्म करता है, अज्ञान युक्त कर्म नहीं करता, क्योंकि सबसे जास्ती ज्ञान संगम युग में उस आत्मा ने उठाया। तो जो आत्मा पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है उसी की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो शिवलिंग बना हुआ है। कोई कहे हीरा किसकी यादगार है? हीरा उसी की यादगार है जो हीरो पाटधारी, शिव हीरो पाटधारी नहीं है, है? हीरो पाटधारी तो ऑलराउंड पार्ट बजाता है ना, शिव तो ऑलराउंड पाटधारी नहीं है। तो तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ हुआ? शिव बाबा तुम्हारे रहने का स्थान है। तो जो हमारे रहने का स्थान है वो ही कहता होगा मन मना भव, मेरे मन में समा जा, कि शिव बाप कहेगा मेरे मन में समा जा। शिव बाप क्यों नहीं कहेगा? शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा अमन है, अमन चैन में रहने वाला है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना मन भी है, तो वो कहता है क्या मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो तेरे मन में क्या है? अरे कुछ है या नहीं है, क्या है? अरे वो आत्मा की संपन्न स्टेज बनती है तो मन में क्या होता है? दुनियावी संकल्प होते हैं। क्या होता है, है? निराकारी बन जाता है ना, ज्योति बिंदु बन जाता है ना। ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प होता है? नहीं होता। तो उस स्टेज में सबको समाना है। कितनों को है? देवान को छोड़ करके उस स्टेज में सबको समाना है। आठ तो अपने पुरुषार्थ से समा जाते हैं, बाकी 108 को थोड़ा बहुत दंड भुगतना पड़ता है, और बाकी जो 500 करोड़ आत्माएं हैं वो देह का कर्म भोग का हो, धर्मराज के दंड का हो, वो भोग भोग करके आत्म की स्थिति में आ जाती हैं। धर्मराज के दंडों से उनके देह बहन का छिलका उतर जाता है, तो वो भी कहाँ समा जाती हैं? फिर वो भी ज्योति बिंदु में समा जाती है। इसलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना, क्या? अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति तो है, मूर्ति माने साकार, अमूर्त नहीं है, आ माने नहीं, मूर्त माने साकार, अमूर्त नहीं है, मूर्ति है, लेकिन कैसी मूर्ति है? अव्यक्त, माना अव्यक्त माने इन आंखों से जो दिखाई न दे, ऐसी अव्यक्त मूर्ति। अरे लिंग दिखाई तो देता है, नहीं दिखाई देता, फिर अव्यक्त क्यों कहा? है
इंद्रियों का बाण नहीं?
हाँ, क्योंकि उसमें इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। व्यक्त तो है लेकिन इंद्रियों की स्मृति नहीं है। ऐसी स्टेज पर हर आत्मा जो पहुंचेगी वो बाप का वर्षा राजाई का प्राप्त करेगी या राजघराने में जरूर आएगी। कैसी स्टेज? ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें इंद्रियों की स्मृति न रहे, अति इंद्रिय, इंद्रियों से अति, इंद्रियों से अतीत ऐसी मन की स्टेज बन जाए कि मन देह की इंद्रियों का एक सेकंड भी ध्यान न करे, इंद्रियों के सुख की कोई लावलित्या नहीं, कोई इच्छा न रहे, ऐसी स्टेज बन जाए। तो जो सहज सहज जिनकी स्टेज बनती है राजयोग सीख करके, उनकी संख्या कितनी? हैं? आठ तो ऐसे हैं जो धर्मदास की सजाएं भी नहीं खाते, क्या? लेकिन जो राजाई का वर्षा पाने वाली आत्माएं हैं, कंट्रोलिंग का वर्षा, उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है? 108। अच्छा, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का जो बॉडीगार्ड होगा उसकी सत्ता नहीं चलती है, है? उसका आर्डर प्रजा मानती है कि नहीं, तो उसकी राजाई नहीं हुई। तो ऐसे ही उस परिवार में जो राजयोग सीखने वाले हैं, उन राजयोग सीखने वालों की संख्या 16,108 है। वो परिवार कैसा परिवार है, है? राजधानी उसे कहा जाता है, राजाओं की धारण शक्ति कहा जाता है। उन्होंने वो शक्ति धारण की है ज्ञान और योग के आधार पर। जो कम जन्म या तो बहुत जन्म राजाई जरूर भोगते हैं, जैसे त्रेता के अंत में तीन कटी हुई गद्दियां दिखाई गईं, तो वो स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां हैं। उनके जो कंट्रोलर हैं वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले साबित हुए या संवर्धन करने वाले साबित हुए? नष्ट करने वाले साबित हुए। इसका मतलब इससे पहले के जन्मों में, सतयुग त्रेता के जन्मों में वो दास दासी बनकर रहे, अंतिम जन्म में जाकर के उनको वो राजा ही मिल जाती। क्या कारण, कोई कारण बना हुआ या बिना कारण के है? क्या यही कारण बनता है कि वो आत्माएं सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो जो चार मानस पुत्र पैदा किए, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उसमें से सनत कुमार जो है वो तो सबसे बड़ा देवी देवता सनातन धर्म का रक्षक साबित हुआ। बाकी तीन जो है वो आक्रामक साबित हुए। संगम युग में आदि के हिस्से को छोड़ करके, क्योंकि आदि में सहयोगी थे, बाकी आदि से लेकर के अंत तक सारे संगम में उन्होंने विरोध किया इस्लामियों क्रिश्चियंस बौद्धियों की तरह। सहयोग ठीक से किया ही नहीं। तो जब लगातार विरोध ही विरोध करेंगे सूर्यवंशियों का, तो उन्हें प्राप्ति कम होगी या ज्यादा होगी? कम प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही ये 16,108 आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। इंद्रियों से, इंद्रियों के रस लेने से परे हो जाती है। इंद्रियों से कर्म करती है, क्या चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्म तो करती हैं, लेकिन कर्म करते हुए ऐसी गहरी स्मृति में समा जाती हैं। ऐसी गहरी स्मृति जो इंद्रियों का रस लेने की बात ही साबित नहीं होती। और यही स्टेज जो है वो पवित्रता की सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज है, जो शिवलिंग को दिखाई गई। वही शिवलिंग सारी दुनिया की खुदाइयों में प्राप्त हुआ। दुनिया में सबसे जास्ती यादगार मंदिर शिवलिंग के, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शंकर जो है वो याद का पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? पुरुषार्थी है, इसलिए शंकर लिंग नहीं कहा जाता। वो ही शंकर पुरुषार्थ करते करते याद का जब बाप समान स्टेज धारण कर लेता है, निराकार, निरहंकार, निर्विकार, कोई भी इंद्रियों में कोई विकार नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, विकार, वी माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य नहीं, साबिती नहीं होगा। विपरीत कार्य क्या होता है? सुख देना है, सुख लेना है, ये श्रीमत के विपरीत है या अनुकूल है कार्य? अनुकूल कार्य है। और दुख देना, दुख लेना, ये श्रीमत के विपरीत कार्य है। तो ऐसी स्टेज में वो आत्मा पहले पहले टिक जाती है, सन्यासियों की तरह नहीं कि कर्मेंद्रियों का कर्म छोड़ दे, कर्मधारा छोड़ने की बात नहीं, जैसे सन्यासी करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां करती हैं, सन्यासी समझते हैं हम बड़े भारी पवित्र हैं, लेकिन दूरबाज खुशबाज हैं, ये गृहस्थियों की तरह हैं, दूरबाज खुशबाज, संग भी हो देह का, देह की इंद्रियों का, कर्म भी हो, कर्म धारा भी हो, लेकिन मन, मन उन कर्मों में लिपायमान न हो, जैसे कमल का फूल, कमल फूल को किंग फ्लावर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किंग फ्लावर, बड़े से बड़ा राजा। तो वो शिवलिंग की जो स्टेज है उसके बारे में शिव ने कहा कि मैं न पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। यानी सोमनाथ मंदिर में जो लिंग है और उसमें जो हीरा था वो पूज्य था या नहीं था, हैं? पूज्य था, तो किसकी यादगार है? कोई साकार मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि पर जो ऑलराउंड इस सृष्टि पर साकार भी रहती है, क्या ऑलराउंड साकार रहती है और बाप समान निराकारी स्टेज भी धारण कर लेती है, लेकिन ऑलराउंड नहीं, ऑलराउंड करती है नहीं। तो बताया, बताओ तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है? है शिव बाबा, शिव बाबा तो वो पूरा शरीर शिव बाबा का आ गया,
शिव बाबा के मंदिर।
मन मना भव का मतलब जो मेरे मन में सो तुम्हारे मन में, माना मेरे मन में ज्योति बिंदु, तो 500 700 करोड़ के मन में क्या होगा अंत में? ज्योति बिंदु होगा। वो ज्योति बिंदु को 500 700 करोड़ याद कर सकेंगे, निराकार को याद कर सकेंगे? निराकार को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? और साकार में निराकार को याद करना सहज होता है। तो सारा संसार महामृत्यु के समय उस साकार में निराकार को याद करेगा, साकार को पहचानेगा और पहचान करके उस निराकारी स्टेज में पहचान करके याद करेगा। तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए सन्यासियों ने मिसाल दिया, सन्यासियों में सबसे बड़े सन्यासी थे शंकराचार्य, वो जब परमधाम से आए तो उन्होंने बताया ये संसार क्या है। ये संसार में जो भी आत्माएं हैं वो सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, कोई छोटे कोई बड़े। अभी अभी पैदा हुए, अभी अभी खत्म हो जाते हैं, क्षण भंगुर है जीवन। तो सागर के बुलबुले कोई बड़े कोई छोटे, तो ऐसे ही जो मनुष्य आत्मा है कोई का ज्यादा पार्ट रंगमंच पर, कोई का कम पार्ट हैं। सब बुलबुले जो भी बुदबुदे हैं वो कहां समा जाएंगे? सागर में समा जाएंगे। तो सागर कौन हुआ है? सागर कौन हुआ और शिव कौन हुआ? सूर्य कौन हुआ? शिव हुआ सूर्य। और सागर हुआ जिसमें ज्ञान जल बहुत भरा हुआ हो, जिसकी थाह कोई आज तक दुनिया में वैज्ञानिक भी थाह नहीं ले सका, वो सागर पृथ्वी माता है। चौथाई हिस्सा पृथ्वी है और तीन हिस्सा सागर है। तो जो सागर तीन हिस्सा है, चौथाई हिस्सा पृथ्वी है, वो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? पृथ्वी माता सागर की गोद में समाई हुई है। दोनों एक दूसरे से अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। और सूर्य? सूर्य डिटैच है। शिव सदा डिटैच है, लेकिन सागर को जब आता है इस सृष्टि पर तो आप समान डिटैच बना देता है। ऐसे ही डिटैच बना देता है जैसे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जब संपूर्ण बनता है और उसमें जो पहला फल आता है पकता है, उसके अंदर जो बीज होता है पूरा पकने के बाद, वो बीज सारे वृक्ष से, फल से, टहनियों से, जड़ों से, पत्तों से अपने को डिटैच कर लेता है या नहीं कर लेता है? डिटैच कर लेता है। ऐसे ही वो मनुष्य सृष्टि का बीज है जो पुरुषार्थ पकने पर क्या हो जाता है? सारी मनुष्य सृष्टि से डिटैच हो जाता है। इसलिए उसमें इतनी ताकत है कि सारी मनुष्य सृष्टि को अपने में अटैच कर लेता है। सारे बुलबुले बुदबुदे किस में समा जाते? सागर में समा जाते। उस आकर्षण शक्ति का नाम भक्तों ने कृष्ण दे दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। गलती हो गई उनसे, एक तरफ पूजा करते हैं कृष्ण बच्चे की और कहते हैं वो संपूर्ण है। बच्चा संपूर्ण होता है या परिवार में बाप संपूर्ण होता है? बाप संपूर्ण होता है। बच्चे में तो वो ताकत ही नहीं है जो परिवार पैदा करे। बच्चा परिवार पैदा करेगा? नहीं करेगा। बच्चा जब मैच्योर्ड बनेगा उसमें वो शक्ति इकट्ठी होगी जिसे हम सत्य कहते हैं। जिस सत्य को धारण करने वाली माता सती कही जाती है। क्या कही जाती है? हैं? सती। तो वो सती शिव की क्या हुई? शक्ति। उस सत्य को धारण किया तो सती, और उसको धारण न कर पाया औरों के प्रति आकर्षित हो गई तो सत्य खत्म हो गया। कि सत्य ही दो प्रकार का है, एक ज्ञान रूपी सत्य निराकारी सत्य और एक साकारी सत्य। साकारी सत्य परिवार का जो बाप होता है उसमें समाया हुआ है, वो सत्य जिस पुरुष में होता है वो पुरुष प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। प्रकृति माने प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना। कोई भी मनुष्य दुनिया में है उसकी पहली पहली रचना प्रकृष्ट क्या है? प्रकृति तो हम जड़ पांच तत्वों को कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी मनुष्य हैं दुनिया के 500-700 करोड़, वो जो रचना रचते हैं पहली पहली रचना क्या कही जाती है? माता कही जाती है। तो वो माता ही वास्तव में प्रकृति का रूप हुई। ये परंपरा भी परमात्मा ही सृष्टि पर आकर डालता है। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस आत्मा का आधार लेते हैं वो आत्मा प्रकृति का पुतला है। अव्वल नंबर, कैसा पुतला? अव्वल नंबर पुतला, जिसका नाम दिया माता। कैसी माता? मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, माने बड़ी अम्मा। और ब्रह्मा एक के नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा भी अनेक हैं। जैसे भारतवर्ष में कहते हैं एक स्त्री मरी तो दूसरी जूती ले ली, दूसरी मरी तीसरी ले ली, तीसरी मरी चार चार शादियां कर लेते। तो रचना हुई पुरुष की स्त्री, उसमें भी जो पहली बार माता बनाई जाती है, रचना की जाती है, उसका ज्यादा महत्व या बीच वाली या बाद वाली का ज्यादा महत्व होता है? पहली माता से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी या बाद की माताओं से जो पैदाइश होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी? इसीलिए दुनिया में भी यही प्रचलन है कि शिव बाप जिस पांच तत्व के पुतले में, जो इस मनुष्य सृष्टि में अविनाशी पुतला है। कौन अविनाशी पुतला है? जिसे शिव बाबा कहा जाता है। जैसे गीता में कहा गया है इदम शरीरम कौन्तेय, इदम इदम माने ये क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र माने खेत, क्या खेत में बीज डाला जाता है ना, खेत धरणी को कहा जाता है ना। तो ये पृथ्वी माता जिसमें शिव ने आकर के ज्ञान का बीज बोया, वो पहली पहली माता माना परम ब्रह्म है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ एक का नाम। वो परम ब्रह्म जो है वो सिर्फ आ आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ साथ पांच तत्वों का अविनाशी पुतला भी है। तो जो ज्ञान का बीज उसने डाला उस माता ने धारण किया। इसलिए वो परम ब्रह्म हो गई। वो जो परम ब्रह्म है वो तुम्हारे रहने का स्थान है। क्या परम ब्रह्म तुम्हारे रहने का स्थान है, जिसके लिए बोला शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उतारने वाले नंबर वार होंगे, अव्वल नंबर का गायन होता है। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जो बीज को, शिव का जो ज्ञान बीज है उसको धारण करने वाली है, वो अव्वल नंबर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्ट बजाने वाली है। उसका कभी आदि और अंत होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा देवता है जिसके लिए गाया हुआ है कि उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसको कोई ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, उसको कोई ने मृत्यु होते हुए नहीं देखा, वो अमर है। अमर तो छोड़ो, अमरनाथ है। अमर माने देवता, देवताओं का भी स्वामी है। तो पता चल गया हमारे रहने का स्थान कहाँ है। परम ब्रह्म इस सृष्टि में हमारे रहने का स्थान है। हमारा परम धाम में है स्थान, जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाप नहीं, क्या बोला मुरली में, बोला जहाँ हमारा बाबा भी रहते हैं। बाबा किसको कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। वो परम धाम में हमारा बाबा भी है बिंदु रूप में, और हम 500-700 करोड़ बच्चे भी हैं। बताया जिसको अभी हम याद कर रहे हैं, अभी माने कभी संगम में हम याद कर रहे हैं कि बाबा आओ परम धाम से। क्या क्या याद कर रहे हैं, हे बाबा आओ परम धाम से। कहाँ आओ है? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, क्या इस सब पांच तत्वों की धरणी में आ जा रहे। मना आएगा तब ही संग का रंग लगाएगा, या दूर ही रहेगा तो संग का रंग लगाएगा? आएगा तो संग का रंग लगाएगा। उस संग के रंग को इंद्रियों के द्वारा खींचा जाता है, कोई आंखों से ही खींच लेते हैं ढेर सारा। क्या वो कौन सी आत्मा है जो आंखों से ही ढेर सारा खींच लेती है? शिवबाप को खींचने की जरूरत है? हैं? बच्चों को खींचने की जरूरत है? अच्छा लक्ष्मीनारायण के चित्र को ध्यान से देखा क्या देखा? लक्ष्मीनारायण एक दूसरे को आँख से भी नहीं देख रहे हैं। और उनके नीचे खड़े हुए जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं। तो वो बच्चे सृष्टि के पहले पत्ते हैं, अव्वल नंबर पत्ते, माना जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आँख, आँख के द्वारा ही सारा संग का रंग ले लिया। कैसे कैसे ले लिया? कब ले लिया? कभी लिया या नहीं लिया? ऐसे ही कब लिया? संगम युग में कब लिया? अरे पहला पत्ता किस साकार का संग का रंग सबसे जास्ती लेता है? पहला पत्ता माने कृष्ण की आत्मा, सतयुगी कृष्ण है। ओम राजे का संग का रंग ज्यादा लेता है, है? शिव बाबा, शिव बाबा में प्रवेश करके, शिव बाबा में प्रवेश करते तो वो एक राम वाली आत्मा हो गई, उसकी आंखों की बात हुई। फिर उसके साथ कोई हीरोइन है, है? कौन है? है? अरे कोई हीरोइन नहीं है? कौन? अरे लक्ष्मी हीरोइन नहीं है, छोटी माँ। छोटी माँ में कौन प्रवेश करता है? छोटी माँ प्रवेश करती है ना, तो जो छोटी माँ प्रवेश करती है उसका संग का रंग लिया पहले पत्ते हैं। कब से लिया? कब से पहचाना है? सृष्टि की आदि से पहचाना है? यज्ञ की आदि में पहचाना, प्रजापिता को पहचाना नहीं? जब वाणी में बोला गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, और जब से शंकर का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, कब से प्रत्यक्ष हुआ? 76 से।
तभी से आत्माओं ने पहचाना।
ओम राधे और किसने? ब्रह्मा माने कृष्ण, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने तो उनमें प्रवेश करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रवेश करके एक दूसरे से उस संग का रंग लिया या नहीं लिया? लिया। तो वो संगम युग में फाउंडेशन उनका पक्का पड़ गया। अच्छा, वो तो वो हुए सृष्टि के पहले पत्ते। उनको जन्म देने वाले कौन? लक्ष्मी नारायण। जो लक्ष्मी नारायण है संगम युग में प्रैक्टिकल साकार जीवन में है या नहीं है? हैं। वो एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं क्या? नहीं देखते। कैसे संग का रंग लेते होंगे? वैभीषण से लेते हैं, आदि से लेकर के अंत तक भी। लक्ष्मी नारायण जब तक संपूर्ण बने तब तक भी उनको देह और देह की इंद्रियों के संग के रंग की जरूरत नहीं। ये वाइब्रेशन का सुख ही उनका सबसे बड़ा सुख हो गया, नीचे थे ऊंचा सुख। वो वाइब्रेशन का सुख उसको गोपियों में, गोप गोपियों में गाया जाता है। क्या अतीन्द्रिय सुख देखना हो, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संग का रंग, कोई इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं हैं बहुत थोड़े समय अनुभव करेंगे, और कोई लंबे समय तक अनुभव करेंगे। रुद्रमाला के मण के वो सबसे जास्ती अनुभव कर सकते हैं, है नंबर बार। फिर भी वो अतीन्द्रिय सुख की स्टेज पर पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ वो चंद्रवंशी आत्माएं मुट्ठी भर जो चंद्रवंश को त्याग करके सूर्यवंश में आ जाती है, जैसे परंपरा है खास भारत में कि कन्या अपने बाप का घर छोड़ करके जब पति के घर में आ जाती है तो कुल बदल जाता है कि बाप का कुल रहता है, बदल जाता है। कहां से परिवर्तन हुआ? संगम। वही लक्ष्मी वाली सोल जब तक एडवांस ज्ञान नहीं मिलता तब तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा के बीच में रहती है, उसी ज्ञान से प्रभावित होती है। ब्रह्मा बाबा जिस ज्ञान से प्रभावित हुए उसी ज्ञान से प्रभावित होती है। ब्रह्मा बाबा ज्योतिबिंदु से प्रभावित हुए, वो ज्योतिबिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है आदि से लेकर अंत तक उससे प्रभावित हुए। उन्होंने याद किसको किया है? ज्योतिबिंदु को याद किया। और ज्ञान भी सिर्फ सुनने सुनाते नहीं तक सीमित रहा या मनन चिंतन मंथन तक आया? सुनने सुनाने तक सीमित रहा। इसलिए ब्रह्मा के जीवन रहते ही बाबा ने बोल दिया था अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। माने जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक गीता ज्ञान ही रहा, वो अमृत नहीं बन सका। जो अमृत को देवताएं पी करके अमर बन जाते हैं, अभी जो ब्राह्मण हैं उनको अमर कहें या मरने वाला कहें? मरने वाला। अभी जो ब्राह्मण हैं बेसिक में हैं या एडवांस में हैं वो मृत्यु लोक के वासी कहें या अमर लोक के वासी कहें? कहां के वासी हैं? हैं? क्यों? हाँ, थोड़ा बहुत कभी न कभी किसी की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिससे प्रभावित हो जाते हैं उसकी प्रजा की शूटिंग कर लेते हैं। और बाप ने कहा एक से ज्ञान सुनना चाहिए। क्या अगर निश्चय हो गया तो एक बार निश्चय पैदा कर लिया कि ये मेरा बाप है तो फिर टलना नहीं चाहिए, अटल रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। दूसरों से सुनना ही नहीं है, सुनाते हैं तो एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल लिया। हियर नो इट। बाप की खिलाफत की कोई बात सुनाता है तो हमें बाबा का वाक्य याद आना चाहिए, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। ये रावण संप्रदाय अपनी बातें सुना करके हमको रावण संप्रदाय में कन्वर्ट कर दे रहा, यहाँ संगम में कन्वर्ट करेगा तो वहाँ भी ब्रॉड ड्रामा में भी कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम किसी की बातें सुनने वाले नहीं। दूसरे धर्मों में भी ऐसे ही है। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं अपने बाप के पीछे पीछे उतरते हैं परमधाम से, वो कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को, दूसरे की बातों को स्वीकार ही नहीं करते। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। इसलिए भारतवासियों की दुनिया में संख्या बहुत कम हो गई और दूसरे धर्म वालों की संख्या बढ़ गई। तो ये कौन से भारतवासी हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने ही धर्म की ग्लानी करते हैं। देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानी करते हैं, अपने बाप की ग्लानी करते हैं न जानने के कारण। बाप को जानते ही नहीं तो ग्लानी करते हैं। माँ को जानते हैं लेकिन जानते हुए भी माँ को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। मुट्ठी भर आत्माएं थोड़ी सी लक्ष्मी जैसी निकलती हैं जो माँ को फॉलो करती हैं। मुख की निकली हुई बात को ज्यादा महत्व देती, गोद को महत्व, शरीर को महत्व नहीं देती। तो जो ढेर के ढेर गोद में पलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो सब ये समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी दुनिया में सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। हम काम विकार की भी हिंसा को दूर करते हैं और ये जो एडवांस पार्टी वाले हैं ये हिंसा को सबसे जास्ती बढ़ावा देते हैं। काम विकार की हिंसा को भी सबसे जास्ती बढ़ावा देते हैं। तो वो अपन को हिंदू समझते हैं। हिंदू का अर्थ है हिंग माने हिंसा, दू माने दूते। जो हिंसा को दूर करे सो हिंदू। तो वो अपन को क्या समझते हैं? हिंसा को दूर करने वाले समझते हैं। यहाँ शूटिंग करते हैं हिंदू बनने की और वहां ब्रॉड ड्रामा में त्रेता के बाद क्या बन जाते? अपने धर्म को भूल जाते। क्या समझते? हम हिंदू हैं और फिर हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। अभी शूटिंग हो रही है, देखने में भी आता है। दूसरे दूसरे धर्मों की जो भी रीति रिवाजें हैं या भारत के भक्ति मार्ग की जो भी रीति रिवाजें हैं, रावण जलाना, राखी बांधना, दीपक जलाना, दीपावली मनाना, ये सारे छठा कर्म जो भक्ति मार्ग के हैं वो अपनाते जा रहे हैं या नहीं अपनाते जा रहे हैं? तो हिंदू धर्म के पक्के हुए ना कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू हिंसा और अहिंसा क्या है उसके अर्थ को पूरा जानते ही नहीं। और दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं वो शिवलिंग की पूजा करती हैं, मानती हैं उनको नहीं मानती। तो धराधार दूसरे दूसरों में धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं और नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। अभी सारा भारतवर्ष यथा राजा तथा प्रजा, जो गवर्नमेंट है वो विदेशियों को फॉलो कर रही है पढ़ाई में, लिखाई में, सभ्यता में, आचरण में, या स्वदेशी परंपरा के आधार पर चलती है, विदेशी बन गए। शूटिंग कहाँ होती है? बीके में शूटिंग हो रही पूरी। इन बीके वालों के भी बाप कौन है? एडवांस वाले। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहा तब तक धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक माउंट आबू से ही चली। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, दीदी दादियों ने आपस में झगड़ा किया और अपने अपने जोनल इंचार्ज 69 में ही बना दिए, जो बाबा ने बोला है वाणी में। द्वापर युग से जब से द्वैतवाद आता है, दो दो प्रकार की धारणाएं हो जाती हैं, धर्म हो जाते हैं, दो दो प्रकार के राज्य हो जाते हैं, दो दो प्रकार के कुल हो जाते हैं, दो दो प्रकार की भाषाएं हो जाती हैं। एक एक बोलता है, दूसरा दूसरा बोलता है, आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं द्वापर की आदि से ही, और अपना अपना प्रोविंस अलग कर लेते। जैसे इब्राहिम आया, इब्राहिम के फॉलोअर्स आए, वो तो जानते ही नहीं है कि ज्ञान इंद्रियों की ताकत से भी सृष्टि चलती है, दृष्टि की पावर से भी सृष्टि चलती है। तो दृष्टि का व्यभिचार फैला देते हैं। क्या करते हैं आते ही? दृष्टि का व्यभिचार जो देव आत्माएं हैं उनके बीच में फैलाते हैं, सारे ही उनसे प्रभावित हो जाते हैं, एक सूर्यवंशियों को छोड़ करके। वो सूर्यवंशी उनसे टकरा करके उनको दूर अरब देश की ओर खदेड़ देते, भगा देते। वो जाकर के वहां अपना प्रोविंस जमा देते, अरब देश अलग कर लिया, राज्य अलग कर लिया, भाषा अलग कर ली, कुल अलग हो गया, परंपराएं अलग हो गई, शूटिंग कहां होती है? 69 में भी ये शूटिंग शुरू हुई थी, द्वापर युग की शूटिंग। पहले विदेशों में एक भी सेंटर नहीं था जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने पर पहला सेंटर लंदन में स्थापन हुआ। तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी। द्वापर के पास जनसंख्या बढ़ती है ना, विविचार के कारण तो जनसंख्या बढ़ी। तो ये विविचार का मूल कहां से पैदा होता है? मूल होता है इन ब्राह्मणों की दुनिया में, जहां बाबा ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान विविचारी हो जाएगा, और ज्ञान विविचारी हो जाएगा तो विविचारी धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाएगी। तो हो रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या एडवांस में भी बाबा ने बोल दिया था 8 राजाइयां स्पष्ट नजर आवेंगी, तो 8 घड़े बन जाएंगे, सब आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, अलग अलग विष्णु पार्टियां तैयार हो गई, हो रही हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की, तीनों बार पसंद नहीं आई, खारिज कर दी, नष्ट कर दी। पहली बार 36 में, 42 से बिना शुरू हो गया, 42 से 45 हीरो शमा नागासाकी के ऊपर, हीरों की शमा नष्ट हुआ। 47 तक पूरा विनाश हो गया और फिर नया संगठन शुरू हो गया ब्राह्मणों का। पहले नाम क्या था? ओम मंडली। फिर दूसरा संगठन 47 से शुरू हुआ, क्या नाम पड़ा? ब्रह्म कुमारी विद्यालय। 69 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर विघटन शुरू हो गया, अपना अपना प्रोविंस अलग कर लिया, विदेशों में सेंटर खुलने शुरू हो गए। वो विघटन होते होते संपूर्ण विघटन कब हो गया है? जिसकी घोषणा मुरलियों में पहले ही कर दी थी, लक्ष्मीनारायण के चित्र में नीचे छपा हुआ है, क्या आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की, कौन सी पुरानी दुनिया? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। ब्राह्मणों की वो दूसरी बार रची गई 47 की पुरानी दुनिया, 76 में क्लास तक खत। तीसरे संगठन की शुरुआत हो गई, उसको मनाया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? बाप का। जैसे यज्ञ के आदि में एक एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, वैसे ही 76 में क्या हुआ है? एक आत्मा एक तरफ और बाकी सारा ब्राह्मण परिवार और सारे उस एक के लौकिक संबंधी और सारी गवर्नमेंट सब ब्रह्मा कुमारी की तरफ, अकेला रह गया। तो कोई घबराने की ज्यादा बात हो गई क्या है? नहीं हुई ना। तो ऐसे ही अभी भी तीसरी बार ये फिर विघटन होगा, जो 76 में एडवांस पार्टी तैयार होती है, 40 वर्ष पूरे हुए, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, ऐसे बोला मुरली में। तो 40 से शुरुआत हो गई, तुम बच्चों में से कोई बच्चा 40 वर्ष पूरे होते होते उस संपन्न स्टेज में पहुंचे, किस संपन्न स्टेज में? वो निराकारी स्टेज, जहां निराकारी भी बने, निर्विकारी भी बने, निरहंकारी भी बने। कैसा निर्विकारी, कैसा निराकारी? जैसे संपूर्ण पद दिखाया जाता है, कौन सा? विष्णु पद, नो विष एट ऑल। क्या प्रूफ? नहीं, ग्लानी जो भी बहुत हो रही है, दिखाया गया कि विष्णु सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है और आराम से लेटा हुआ है, या उसको कुछ बदहजमी हो रही है? है आराम से लेटा, उठ के भाग तो नहीं खड़ा होता है? नहीं तो रजाई के अंदर एक सांप घुस जाए और पता चले सांप है, रजाई रजाई छोड़ छाड़ के भागेगा। लेकिन वो स्टेज कैसी है, है? वो स्टेज विष्णु की दिखाई गई। सर्प सबसे ज्यादा कामी होता है, क्या होता है? सबसे ज्यादा कामी। बंदर में पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं, लेकिन सर्प में काम विकार सबसे जास्ती होता है। तो वो सर्प सर्पणियों की शैया दिखाई गई, उसका दूसरा रूप देख लो। शंकर के गले में ही कौन पड़ा हुआ है? सांप पड़ा हुआ है, उसका नाम है वासुकी नाग, सर्पों का राजा वासुकी नाग। वासुकी मात्रा बढ़ी हुई है, जैसे ब्राह्मण मात्रा बढ़ी हुई है, बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। किसका पुत्र है? वसु। वसु का पुत्र वासुकी। वसु किसे कहा जाता है? धन संपत्ति को वसु कहा जाता है। तो वसु हुआ कौन? शिव बाबा हुआ वसु, जो प्रैक्टिकल में धन संपत्ति ज्ञान की देता है, जिसको देता है उसका नाम वासुकी। ऐसे ही भागवत और महाभारत में वासुदेव, क्या नाम दिया? वासुदेव। किसका पुत्र? वसुदेव। तो वसु वहां भी है। वसु माने वसुदेव जो है वो धन संपत्ति का दाता, धन संपत्ति वाला है। और वो धन संपत्ति वाला जो वसुदेव है कौन से कुल का था? यादव कुल का था। शंकर को कौन से कुल का बताया? यादव कुल का बताया। वो जितने धनाढ्य होते हैं उतना धनाढ्य दुनिया में और कोई संप्रदाय न, कौरव संप्रदाय न पांडव संप्रदाय। तो कौरवों का मुखिया भी बताया, पांडवों का भी मुखिया बताया और यादवों का भी मुखिया शंकर बताया। तो शास्त्रों में जो भी बात दिखाई गई है उसमें ये बताया गया है कि वो आत्मा सदैव साथ में है। जैसे रामायण में भी जो लक्ष्मण है वो सदा साथ रहता है, या कभी साथ रहता है कभी नहीं रहता है, है? सदा साथ रहता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग सांप है। भागवत में उसी को बलराम कह दिया है। किसके साथ रहता है? कृष्ण को भगवान समझ लिया, उनके साथ रहता है। तो शंकर के जो गले में पड़ा हुआ है, विष्णु की जो शीश सैया दिखाई गई है वो सांपों की सैया है। गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की झोल है, जो अच्छे से गले को पकड़ लिया। भारतवर्ष में कौन सा पशु है जो राष्ट्रीय पशु माना जाता है? हैं? मोर तो पक्षी है, टाइगर। और टाइगर से ज्यादा पावरफुल दमदार कौन सा पशु होता है? है? बबर शेर। अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो बबर शेर जीतेगा या टाइगर जीतेगा? बबर शेर जी। और बबर शेर सदैव गर्दन से ही पकड़ता है। कहाँ से पकड़ता है? गर्दन से पकड़ता है। तो ये वासुकी नाग गर्दन से जकड़ा हुआ है, लेकिन उसको फेंकता नहीं है पकड़ के। फेंकता है? क्यों नहीं फेंकता? हैं? हाँ, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है। ये जो जिन्हें बाप दादा कहा जाता है ये तो जन्म जन्म के साथी हैं। सत्यु के आदि में नरसे नारायण पहले पत्ते का बाप, त्रेता के आदि में वो जो पहला पत्ता है वो नीचे गिरते गिरते साहूकार बन जाता है। उस साहूकार का बच्चा रामबली आत्मा बनते। तो दोनों युगों में परिवर्तन हो गया ना, वो उसका बच्चा त्रेता में, वो उसका बच्चा। फिर द्वापर में आ जाओ, जो सत्युग के आदि में बाप था वो ही द्वापर के आदि में फिर बाप कहो गुरु कहो बन जाता है। और कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती है? विक्रमादित्य। नहीं सुना? विक्रमादित्य मुरली में भी बोला, चित्रों में भी दिखाया। वो विक्रमादित्य जब राजा बनता है तो द्वापर में सभी राजा भिखारी, भिखारी राजाओं को किसी से मंत्रणा लेना बहुत जरूरी। मंत्रणा लेने के लिए वो ब्राह्मणों को बनाते हैं, तो उन्होंने अपने बाप को बना लिया। क्या मंत्रणा दी? शिवलिंग की पूजा करो, मंदिर बनाओ। तो वो उसका बाप, वो उसका बाप। ऐसे ही कलयुग के में आदि में, कलयुग के आदि में कौन सी आत्मा भारत का बड़ा राजा माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान जो सतयुग के आदि में भी संगम में पृथ्वीराज था, वो त्रेता के बनने कलयुग के आदि में भी फिर पृथ्वीराज चौहान बना, और वही पृथ्वीराज चौहान कलयुग आदि के समय में माया के द्वारा अंधा बना दिया जाता। क्या बना दिया जाता? अंधा। किसके द्वारा? हैं? माया का रूप तो होगा कोई। माया आती है तो स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पदार्थ के रूप में आती है या नहीं आती है? हैं? तो किस रूप में पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गई जो गिरा दिया? हैं? अरे किसी को नाम याद नहीं? संयोगिता। संग माने संपूर्ण, योगिता माने योग लगाने वाली। कौन आ गई? संयोगिता। संयोगिता वास्तव में भारतीय परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी या पत्नी बनने योग्य थी? भतीजी थी या पत्नी थी? पति? पुत्री। पुत्री समान थी ना, वो उल्टा काम कर लिया। जो भारतीय राजा हैं सारे विरोधी हो गए, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का कोई सहयोग नहीं दिया। बस उसी समय से पतन शुरू। किसने अंधा किया? हैं? संयोगिता माया बन गई उसने अंधे का। संयोगिता माने संपूर्ण योगिनी कौन हुई? वो संपूर्ण योगिनी कौन है? हैं? काशी नगरी। काशी नगरी को बताया काश्य, जिसमें समाया हुआ है, तेज है योग का, लेकिन संपूर्ण योगिनी नहीं बताया। हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी संपूर्ण योगिनी। लक्ष्मी ऐसी योगिनी है जो कीचड़ में डाल दी जाए, कीचड़ की दुनिया में, और फिर कमल, कमल फूल के समान बनी रहे। हैं? हाँ, ये जगदम्बा का पार्ट है। कैसा पार्ट है? कीचड़ की दुनिया में गृहस्थियों के बीच में, गंदे से गंदे गृहस्थियों सब धर्मों के बीच में डाल दी गई, क्योंकि सबकी माँ है ना। क्रिश्चियंस की भी माँ है, मुसलमानों की भी माँ है, नास्तिकों की भी माँ है, सबकी माँ है। तो सब तरह के बच्चे उसकी गोद में अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गोद, तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ को मार ही डालते हैं पैदा होते समय, जैसे बिच्छू। बिच्छू से जो बच्चे पैदा होते हैं कैसे होते हैं? पेट फाड़ के पैदा होते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, कोई बच्चे नाक नोचते हैं, कोई बाल खोच लेते हैं, कोई आंख में उंगली डाल देते हैं। तो वो दिल्ली रूपी धरणी ऐसी धरणी है भारत की, भारत की ऐसी राजधानी है, धारणा शक्ति, राजाओं की धारणा शक्ति है, जिसने सब धर्म के आत्माओं को अपनी गोद में बच्चा बनकर के पाला। सब धर्मों ने राज्य किया है कहाँ? दिल्ली में, और दुनिया का कोई शहर नहीं है जहाँ सब धर्मों के राजाओं ने राज्य किया। ऐसी पावरफुल धरणी है। कैसे बनी पावरफुल? कीचड़ की दुनिया में भले रहती है लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? हैं? क्यों?
माँ का कुआ है।
हाँ, एक तो ये है कि सारी दुनिया के बच्चे जो है हर धर्म के जगदम्बा के ही बच्चे हैं, मोह हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो प्रकृति का चैतन्य रूप है। क्या? प्रकृति माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, पिता है, पति है, उसकी पहली पहली वो रचना है यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। कैसे हैं? हाँ, शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो पहला ब्राह्मण पैदा होता है। कौन हुआ? प्रजापिता। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण मात्रा आ गई तो किसका बच्चा है? ब्रह्मा का। कौन हुआ वो? पर ब्रह्मा साकार रूप में जगदम्बा, ब्रह्मा को। उस जगदम्बा में ये हिम्मत किसने दी? जो हिम्मत दादा लेखराज में नहीं आई, जो हिम्मत दादा लेखराज की बहन में नहीं आई, वो हिम्मत उस माता में आ गई बोल करके सुनाने की। हैं? हाँ, हिम्मत है बच्चे मदद बाप। उस आत्मा ने हिम्मत की और पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। मना वो आत्मा जो है बड़े से बड़ी माँ हो गई, जगदम्बा कहो या ब्रह्मा का दूसरा रूप कहो। ब्रह्मा ही जब शरीर छोड़ता है तो जगदम्बा में प्रवेश करके वो संपूर्ण रूप धारण करता है जिसकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और वो ही ब्रह्मा की आत्मा जब माता में प्रवेश करती है तो पूजा होती है। पूजा किस लिए होती है? पूजा पवित्र की होती है, पूजा अपवित्र की होती है तो वो तो महाकाली बनती है तमो प्रधान स्टेज। हाँ, तो बुद्धि बुद्धि जो है वो कहाँ लगी रहती है? शिव बाप में नहीं, शिव बाबा में, साकार निराकार के मेल में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्यों लगी रहती है? हाँ, कोई भी कन्या है, कन्या के जीवन में जो पहली छाप जिस व्यक्ति के संग के रंग की लगेगी, वो संग का रंग उस कन्या को कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो वो बात है, जगदम्बा को वो स्वरूप भूलता ही नहीं क्योंकि लंबे समय तक संग का रंग लिया। इतना लंबे समय तक संग का रंग इंद्रियों के द्वारा और कोई भी कन्या सरेंडर होने वाली नहीं ले पाती, इसलिए वो सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन जाती। मना जो हीरो पार्टधारी है उस हीरो पार्टधारी के संग का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन गई। और इतनी पावरफुल बन जाती है कि जो विश्वपति कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है, उससे भी टक्कर ले लेती। टक्कर लेकर के उसको भी डाउन कर देती, वो अकेला रह जाता, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ, वो किसके लिए गायन है कि जिसने सूर्य को हप कर लिया था, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया, हनुमान की आत्मा कौन? वो ही ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है। जो जगदम्बा महाकाली के रूप में मस्तक में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो ऐसा पार्ट बजाती है एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कि सबके गले काटते। गले काटना माने है? हाँ जी, ऐसी सख्त परीक्षा होती है बच्चों की, साधारण बच्चे नहीं, बेसिक के एडवांस की पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे, जो बहुत कुछ बाप को पहचान लेते हैं, याद भी करते हैं। ऐसी तीखी याद है उन बच्चों की कि माया को भी तंग कर देते हैं। एक अद्वैतवाणी में बोला, माया तंग आ चुकी है, इतना योग बल है उन बच्चों में। लेकिन माया बड़ी बुद्धिमान है, ऐसी बुद्धिमान है कि जब देखती है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, अच्छी तरह से तंग आ चुकी, तो चालाकी ये करती है कि वो जगदम्बा से हाथ मिला लेती, प्रकृति से हाथ मिला लेती, चैतन्य प्रकृति से। जगदम्बा जो इतना लंबे समय तक बाप के साथ ही बनकर रही, वो माया से कैसे हाथ मिला लेती है? इसका कारण क्या है? कोई कारण, बिना कारण को कोई काम होता है क्या? क्या कारण है? हाँ, जड़ तुम्हारी बुद्धि है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य। पुरु माने पुरी, शरीर रूपी पुरी माने पुर, कानपुर, और उसमें रहने वाली आत्मा माने शयन करने वाली। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा, आत्मिक स्थिति, उसको कहा जाता है पुरुष। तो पुरुष का रूप तो है प्रजापिता, जब संपन्न स्थिति धारण करता है तब, और प्रकृति जगदम्बा, जिसकी बुद्धि में पहचान ही नहीं होती पूरी। इसलिए मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे जास्ती साथ कौन रहता है? जगदम्बा रहती, इतना साथ रहती है तो भी बाप को पहचान नहीं पाती। पहचाना होता तो छोड़ती क्यों? छोड़ गई, माया से हाथ मिला ली। तो ये अल्प बुद्धि की बात हुई या बुद्धिमत्ता की बात हुई? अल्प बुद्धि की बात हुई। हाथ मिला लिया और माया बहुत पावरफुल बन गई, जो बच्चों की योग बल से तंग आ चुकी थी। इतनी पावरफुल बनकर के ऐसी फाइनल परीक्षा लेती है, जिस फाइनल परीक्षा में 17, 18, 40 वर्ष पूरे होते होते सबका गला कटवा देती है। किसके द्वारा? महाकाली के द्वारा। गला काटने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता, ये ऐसे हो सकता जैसे 98 में कंपिल में हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिस दिन था जब कृष्ण का जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जेल से स्वतंत्र हुआ, तो उस समय आधे बच्चे टूट के चले गए, सरेंडर हुए। क्या 40-50 बच्चे चले गए, अर्धविनाश हो गया जैसे द्वापर के अंदर। वो पहला जन्म है ब्राह्मण का, पहले पत्ते का। क्या वो कृष्ण रूपी पहला पत्ते का पहला जन्म? लेकिन ब्राह्मण का जब तक दूसरा जन्म न हो तब तक ब्राह्मण अधूरा माना जाता है। दूसरा जन्म माने यज्ञोपवीत। ऐसे ब्राह्मणों में मानते हैं कि यज्ञोपवीत हुए संपूर्ण नहीं होता ब्राह्मण, और जब तक संपूर्ण नहीं हुआ है उसकी शादी नहीं करनी है। तो वो हुआ अर्धविनाश और अब होने वाला है संपूर्ण विनाश। तो उस संपूर्ण विनाश में जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है। 76 में विनाश हुआ था तो कोई घबराहट की बात हुई क्या? है कोई दरबदर हो गए क्या? नहीं। ऐसे ही अभी भी थोड़े समय की परीक्षा होगी, जिस परीक्षा का प्रारूप अव्यक्त वाणी में पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वाले कौन? जो रोज मिनी मधुबन में जाते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, खुशी लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं, खूब सेवा करते हैं, मधुबन को अपना घर समझते हैं। घर और घर के संबंध याद नहीं आते उतने जितना मधुबन याद आता है, जितना मधुसूदन याद आता है। ऐसे मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर वालों को, ये ज्ञान सरोवर क्या है? माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया वो कौन सा? हाँ, ज्ञान सरोवर माने ज्ञान मान सरोवर, जो पहाड़ों पे ऊंची स्टेज पे दिखाया जाता है, जिसका पानी इतना पारदर्शी है कि बहुत गहरा होते हुए भी जो तल्ला है पत्थर का वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। माने धूल के कण का नाम निशान नहीं है। धूल माने देवान की धूल का नाम निशान नहीं है उसे ज्ञान जल में, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हिंदुस्तान की, भारत की वो बड़े से बड़ी नदी जिसमें सबसे जास्ती ज्ञान जल भरा हुआ है। गंगा का जल तो सूख जाता है, गंदा भी हो जाता है, राम तेरी गंगा मैली, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का जल कभी सूखता नहीं। तो वो ज्ञान मान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या हमेशा के लिए? परीक्षा थोड़े समय की होती है या सदाकाल की होती है? तो थोड़े समय की परीक्षा होगी। उस थोड़े समय की परीक्षा में पता लग जाएगा कौन कौन किससे प्रभावित होकर रहते हैं दुनिया में। क्या जिससे प्रभावित होते हैं उसकी प्रजा बन जाते हैं? क्या अगर जगदम्बा से प्रभावित हो गए तो जगदम्बा की प्रजा बन जाते हैं। सारी दुनिया जगदम्बा की प्रजा बनती है, इसलिए सिखों में गायन है राज करेगा खालसा। सृष्टि का विनाश होगा
तो खालसा राज करेगा। तो क्या हम महाकाली के अंडर में चले जाएंगे? है? नहीं जाएंगे। अरे वो गला काट लेगी तो अंडर में जाना पड़ेगा ना।
थोड़े समय मिल जाएंगे,
फिर अष्टदेवों में आ जाएंगे, नई राजधानी में आ जाएंगे। अरे दो ही दुनिया है, एक पुरानी दुनिया एक नई दुनिया। पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी तो नया संगठन रूपी नई दुनिया बनेगी। तो 76 में विनाश हुआ के तुरंत सब आ गए 76-77 के बाद, है? अब तक भी आते रहते, ऐसे ही होगा। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे ही आएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग का चल रहा है या ज्ञान मार्ग का चल रहा है? है? क्यों, हम तो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, है? ले तो रहे हैं भगवान का ज्ञान, लेकिन दूसरों की बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं बीच बीच में। दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं तो क्या होता है अंजाम? उनकी प्रजा बन जाते हैं। ये गुरुडम यज्ञ के आदि में भी चल रहा था। सन 47 से सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, 76 तक भी ये गुरुडम चलता रहा। और एडवांस पार्टी आ गई तो भी ये गुरुडम चल रहा है कि गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं, देहधारियों से। बाबा की वाणी से प्रभावित होना चाहिए या देहधारियों की सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पानी चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है? असलियत क्या है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई या नहीं पाई? पाई। इतना लंबे समय से समझाते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से मुरलियों में समझाया, टीचर के रूप में इतने साल समझाया, लेकिन देहधारी धर्मगुरुओं का पल्ला पकड़ना बंद नहीं किया। बाबा कहते हैं इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो, गोली गोली मार रहे हैं कि गले लगा रहे हैं? तो बाबा याद दिलाते हैं, जिसको अभी हम याद कर रहे हैं कि बाबा आओ, परम धाम से आओ, फिर से रावण राज्य अब हो गया है। कहाँ हो गया है फिर से रावण राज्य? है फिर से ये शब्द पूर्व कल्प के लिए कहा जाता है या इसी युग के लिए कहा जाता है? इसी युग के लिए कहा गया कि पहले भी रावण राज्य हो गया था यज्ञ में। क्या दूसरी बार सृष्टि हुई ब्राह्मण की, फिर 76 में तीसरी बार सृष्टि हुई राम राज्य की, फिर अभी रावण राज्य हो गया। रावण राज्य हो गया उसके लिए घोषणा भी मुरली में कर दी, 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। कहां है? ब्राह्मणों की दुनिया में। तो फिर से रावण राज्य हो गया है कहां? 5000 साल के बाद है? फिर से माने है? इसी संगम युग की बात है। हम पतित बन गए, बाबा अब फिर से आ जाओ। आ जाओ का मतलब क्या हुआ? आया नहीं बाबा, आया नहीं, नहीं आया। आया आया गुप्त बच्चा माँ के पेट में जब गुप्त है तो उसे आया कहेंगे कि बच्चा आया घर में, तो क्यों कह रहे बच्चा बाबा आया, बाबा आया या अभी गुप्त है? है गुप्त है, आया कहाँ? जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले तब के लिए बोला कि जो इन आँखों से देखे वो कहे बच्चा आया, मेरा बाबा आया, जो इन कानों से सुने उआ उआ की आवाज, पड़ोस में होगा सुनेगा तो क्या कहेगा, अरे पड़ोस में बच्चा आया। तो अभी आया या नहीं आया है? घड़ी घड़ी में बदल जाते, अभी कहते आया अभी कहते नहीं आया, ऐसे क्यों करते? पक्का बताओ कि आया या नहीं आया। आया लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, खास आपको नहीं प्रत्यक्ष हुआ है? माना बाप का जो जन्म दिवस मनाते हैं वो कौन सा मनाते हैं? है? शिवरात्रि। तो वो शिव की महाशिवरात्रि जो गाई हुई है बड़े से बड़ी रात्रि, वो अभी आ गई है? आ गई, आने वाली है, आई नहीं, मैंने और अज्ञान अंधकार में डूबना है, पक्का कर लिया? अरे आ गई या नहीं आ गई है? आ गई,
अभी नहीं आई,
अभी नहीं आई और डूबना है। बाबा कहते जब तुम पूरा अज्ञान अंधकार में दलदल में विकारों की डूब जाते हो तो मैं चोटी से पकड़ करके उठाता हूँ। कैसे पकड़ करके? चोटी। कौन है ब्राह्मण चोटी? हाँ, उस आत्मा को पकड़ करके उठाता है। इसलिए चोटी में जब गांठ बांधते हैं तो क्या बन जाता है? शिव बन जाता है। तो अभी आया या नहीं आया? बताओ। नहीं आया तो, लेकिन अभी पूरी गांठ नहीं बंधी है। आया, भावनाएं पड़ रही हैं, क्या परम ब्रह्म के साथ। जब पूरी सात भावनाएं पड़ जाती हैं तब क्या होता है? गांठ गांठ बांधी जाती है ना? नहीं बांधी जाती, तो गांठ बंध रही है। ये गांठ पूरी बंध जाएगी तो शिवलिंग बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो यो शिवलिंग जब संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएगा तो उस समय जो गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग है वो अपना बंधन छोड़ देगा या लगाए रहेगा? छोड़ देगा। अभी सर्प कहो, बैल कहो, बैल तो जानवर होता है ना, बुद्धि चलाता है कोई काम करने से पहले नहीं? तो बैल कहो, सर्प कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, वो बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? हैं? अभी बैल शंकर पर सवार हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो बबर शेर ने टाइगर को कहां से पकड़ लिया है? गर्दन से पकड़ा हुआ। अब टाइगर किस इंतजार में है? लक्ष्मी के आने के इंतजार में है। लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी आएगी तब संपूर्ण योगी बनेगा, संपूर्ण ज्ञानी बनेगा, या जब संपूर्ण ज्ञानी संपूर्ण योगी बनेगा तब लक्ष्मी आएगी? नियम क्या है? संपूर्ण योगी संपूर्ण ज्ञानी बने तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आई तो खेल खलास, राजधानी स्थापन हो जाती है। तो बताया कि बैल पर शंकर जब सवारी करता है तो तरीका क्या है, वो तरीका भी मुरली में बता दिया। क्या बताया है? हाँ, बैल पर चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं, घोड़े पर भी चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस कि जब चाहे तब हाई जंप लगा सके। कैसी हाई जंप? कि एक बार निराकारी स्टेज में टिक गया तो जितना समय चाहे उतना निराकारी स्टेज में टिका रहे, तो कहेंगे हाई जंप हो गई। इसलिए बैल के कंधे पर क्या दिखाते हैं? शिवलिंग दिखाते हैं। तो क्या शिव बैल के ऊपर सवारी करता है? हाँ, शंकर तो बैल के ऊपर वो गुम्मड़ शिवलिंग क्यों दिखाते हैं?
ब्रह्मा के बीच में प्रवेश है, ब्रह्मा के बीच में प्रवेश है।
ब्रह्मा
ब्रह्मा भी तो शंकर में है।
ब्रह्मा शंकर में है,
शंकर शंकर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा में।
शंकर शंकर ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, उल्टा काम हो गया। अभी शिव शंकर में प्रवेश कर, लेकिन बैल पर जो गुम्मड़ दिखाया वो किस बात की यादगार? जो जर्सी गायें विदेशी होती हैं, जर्सी बैल होते हैं, उनके ऊपर गुम्मड़ नहीं होता है, शिवलिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विदेश में शिवलिंग शिव बाप आते ही नहीं, आते कहाँ हैं? तो भारतवासी बैल में आते हैं। तो भारतवासी बैल में वो शिव का रूप क्यों दिखाया गया? क्योंकि शिव जब शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी जब शिवलिंग स्वरूप बन जाता है, संपूर्ण निराकारी बन जाता है, तब बैल के ऊपर सवार हो जाता है। तो उसकी यादगार दिखाई गई है, बैल के ऊपर शिव दिखाते हैं। वो शिव है नहीं, वो शिव है आत्माओं का बाप नहीं, कौन है? शंकर वाली आत्मा है जो शिव स्वरूप बन जाती है संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर। इसलिए मंदिरों में, शिव के मंदिरों में शिवलिंग भी दिखाते हैं, प्रवृत्ति की यादगार। काहे की यादगार? प्रवृत्ति प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, वृत्ति माने व्रत। क्या? स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति जो है वो शिव शंकर की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की यादगार। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का साथ नहीं देता। फिर भी शिव के मंदिर जहां बने होंगे वहां बैल भी दिखाएंगे। कहां दिखाते हैं? हाँ, उसका मुख किस तरफ है? नाली की तरफ है। बाबा कहते हैं, अरे कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति बना दिया, जुल्म हो गया। क्या बोला है? ये जुल्म हुआ कि नहीं? जुल्म हो गया। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में बैल को वहां दिखा दिया। और प्रैक्टिकल में अभी है भी क्या, वो कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान गीता का समझती है या नहीं समझती है? गीतापति भगवान समझती है या नहीं समझती है? समझती है। तो गीतापति भगवान जब समझती है तो उसकी बुद्धि में है ना कि मेरे संग के रंग से ही ये कन्याएं माताएं पावन बनेंगी, इसलिए उसको अपना शरीर तो है नहीं, तो क्या करती है? राम वाली आत्मा में, शंकर में प्रवेश करके वो गले से पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसकी बुद्धि को पूरा कंट्रोल करता है कि नहीं? ऐसे तो अभी बाबा आया परम धाम से या नहीं आया? आया, फिर आया, आ गया। जैसे बच्चा आता है तो कहते हैं बच्चा आया, सभी कहते हैं, जो देखेगा सो कहेगा बच्चा आया, पड़ोसी सुनेगा उआ उआ की आवाज तो कहेगा बच्चा आया। तो क्या ऐसे आ गया? जो देखेगा जो सुनेगा, 500 करोड़ में से जो भी देखेगा सुनेगा तो कहेगा ना कि हाँ भगवान बाप आया, तो आया, आया कि नहीं आया? अरे आज कहते हैं आया, कल कहते नहीं आया। तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? मृत्युलोकवासी हैं। ऐसी स्टेज हो जाए कि एक बार आ जाए, कब आ जाए? जब महान शिवरात्रि हो जाए, बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में हो जाए। सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, सन 36 से पहले से ही है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहां हैं? अज्ञान अंधकार में, क्योंकि अपने बाप को ही नहीं जानती। जानती होती तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी मानती, वो बाप को तो जानती ही नहीं। और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं वो जानते हैं, हैं? आज जानते हैं और कल, कल दूसरों से प्रभावित हो जाते। तो आज बच्चा बाप का बना और कल, कल मर गया। तो जन्म लिया, लिया ना लिया बराबर हो गया। तो बोला कि हम पतित बन गए हैं, रावण राज्य हो गया है, बाबा अभी फिर से आओ। फिर से आओ का मतलब बाबा अभी इस दुनिया में नहीं है, है तो लेकिन आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि। तो अभी तुम बच्चे इस अर्थ को जान गए हो क्या कि बाबा आ गया या नहीं आ गया? है? आ गया है? आ गया नहीं आया है? अब नहीं कहोगे किसी से? अब कोई को बाहर की दुनिया में नहीं कहोगे कि बाबा आया, भगवान आया है? कहोगे? ये क्या बात हुई, आ गया कि नहीं आ गया? गुप्त रूप में आया। तो जैसे बच्चा अम्मा के पेट में आता है ऐसे आया, तो उसको जन्म लेना कहा कहते हैं, शिव जयंती कहें। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो साकार में आ गया है? बच्चों के सामने आ गया एक बार बुद्धि में बैठ जाए कि मेरा बाप है तो जो असल बच्चा होगा तो वो जिंदगी में कभी दूसरे से ये नहीं कहेगा पता नहीं ये हमारा बाप है या नहीं। तो ऐसे है कि निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है, है? चलता रहता है तो नहीं आया ना जब अनिश्चय होता आ गया। हाँ जब अनिश्चय होता तो मृत्युलोक या अमर लोक। बाप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तो जीवन में हैं हम सब क्या दुख दर्दों से मुक्ति मिल गई तो बाप आ गया क्या? अरे आ गया। अरे बाप की पहचान है वो इतना सर्वशक्तिवान है कि जब आता है तो एक सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता है। नहीं तो 80 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते दिल्ली में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई राजधानी स्थापन नहीं कर पाई और ये आपस में लड़ झगड़ रही है। घड़े बने हुए हैं अलग अलग जैसे दुनिया में अनेक धर्म के घड़े बन गए अनेक राजधानियां बन गई और एडवांस वालों में भी यही होने वाला है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं तो एक सेकंड में राजधानी स्थापन करता हूं एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता हूं तो मिल गई। इसका मतलब बाप आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे ये वीडियो दुनिया वालों के सामने भी जाएगा इंटरनेट में कल डाला जाएगा तब क्या करेंगे वो लोग आपसे पूछेंगे अभी तक तो आप कहते थे कि बाप आ गया और आप यहाँ वो पूछा जा रहा है तो आप चुप हैं कि आ गया कि नहीं आ गया डोले में पड़े हुए हैं आया कि नहीं आया हा? आया और बाप तो मुरली में कहा हुआ है कि मैं आता हूँ तो एक सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता हूँ एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ तो आ गया। आ गया श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझे।
बाबा ने बोला हुआ
क्या बोला हुआ
बच्चों को दे दिए के स्वभाव है तुम बच्चों को दे दिया के स्वभाव दे दिया आना जाना करते हो ना
आना जाना करते हो आप आना जाना कर रहे हो आप कर रहे हो
इस बच्चे को बाबा कर रहे हैं ना
है
इस बच्चे को कर रहे हैं
ना कौन कौन कर रहे हैं बताओ एक भाई का नाम बता दो एक भाई का नाम बता दो मालूम ही नहीं और वो भी जिस नई दुनिया की सौगात दी है वो नव दुनिया का नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है या पहली मंजिल 84 मंजिल में से पहली मंजिल तैयार हो गई है कि फाउंडेशन पड़ रहा है फाउंडेशन पड़ रहा है फाउंडेशन तो दुर्मुट से ठोंका जाता है धच धच तो उसमें पत्थर टूट के यूं गिरते हैं जाकर के तो अभी परीक्षा होनी है कि हो गई होनी है जब परीक्षा होगी फाइनल पेपर हो जाएगा जो पास हो जाएंगे वो कह सकते हैं कि राजधानी स्थापन हो गई। अभी कोई नहीं कह सकता कि राजधानी स्थापन हो गई एक सेकंड में बाप ने राजधानी स्थापन कर दी। जब बाप ने राजधानी स्थापन की ही नहीं तो बाप आया या नहीं आया?
नहीं आया, नहीं आया।
योगेश भाई कह रहा है, औरंगाबाद वाले सारे पूछेंगे तुमने हमें बेवकूफ बनाया अभी तक। वो भी आज आया कल नहीं आया, आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि। महाकाली और माया दोनों देवियां मिलकर के जब फाइनल पेपर लेंगी तो उस पेपर में पास जो होंगे वो ही तो कह सकते हैं, फेल हो गए तो कहां से कह सकते हैं।
पता कैसे चलेगा ये पास हो रहे हैं फेल हो रहे
हैं?
पता कैसे चलेगा ये लोग पास हो रहे हैं?
सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया कि नहीं लग गया है? पता कैसे चला? पता चला है या नहीं चला है? चला ना है? हाँ तो क्लियर हो गया, माने वो टू लेट का बोर्ड लग गया ना। अब उस पद को कोई दूसरा नहीं पा सकता। जो पहले नंबर का प्रत्यक्षता रूपी पद है, विष्णु पद है, वो डिक्लेयर हो गया, वो पद अब कोई नहीं पा सकता, टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी फिर दोबारा ऐसे ही होना है, फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा, उसमें कितने निकलेंगे? आठ निकलेंगे, 18 कितने रहेंगे? आठ रहेंगे। तो जो 18 है, 8 रहेंगे, उन्हीं के लिए कहा जा सकता है जो पांचवे दानर होते हैं। तो बच्चे तुम इन अर्थ को समझते हो, कोई फिर इसमें नया होगा 10-12 रोज का होगा तो उसकी बुद्धि में ये बातें इतनी नहीं बैठेंगी जितना तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि बाप तुमको समझाते हैं। क्या? बाप तुमको समझाते हैं, इनको इनको नहीं समझाते, इनके फॉलोअर्स को नहीं समझाते, उनको उनको भी नहीं समझाते, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं समझाते, तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी तुम रचयिता और रचना को जानते हो, अच्छा रचयिता को जान लिया, रचयिता साकार या निराकार? फिर रचना, रचना साकार। कौन है रचयिता और कौन है रचना? प्रजापिता रचयिता और लक्ष्मी नारायण रचयिता और राधा कृष्ण रचना। चलो रचना को भी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, फिर रचना के आदि मध्यंत उसको जानते हो, रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, आदि शक्त से लेकर के कलयुग तक आदि सतयुग से लेकर के कलयुग तक उसके अनेक जन्मों को जानते हो? किसको? रचना की बात बताई, जानते हो तुम? बच्चे जानते हो कि सतयुग में तो बहुत थोड़े थे हम राज करते थे और तो कोई था ही नहीं, ठीक है ना बच्चे? कोई भी नहीं था, माना कोई माने दूसरा धर्म का कोई भी नहीं था। चंद्रवंशी थे है? चंद्रवंशी भी नहीं थे, हम देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी नहीं था,
कोई धर्म दूसरा था ही नहीं, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जहाँ एक धर्म उसे स्वर्ग कहा जाता है, और जहाँ अनेक धर्म उसे नरक। क्यों? क्योंकि जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो सब नर होते हैं, देवता देव आत्मा कोई भी नहीं होता, इसलिए वो नर रूपी धर्म पिताएं नरक बनाते हैं, रौरव नरक बनाते हैं। और जो सदा स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। हम देवी देवताओं का राज्य था, कोई था ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ गोलमाल कहाँ से आवेगी, वहाँ अधर्म कहाँ से आया? तो देखो, अधर्म की बात लिख दी शास्त्रों में, तभी बात समझाते हैं बच्चे। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, इसमें कोई सार नहीं है, तभी ये भक्ति मार्ग में उतरती सीढ़ी है। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कोई क्या नहीं है, सार नहीं है, सार नहीं है भक्ति मार्ग में, सार नहीं है। सत्युग त्रेता में सार है क्या? आत्मिक स्थिति है। और द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में आत्मिक स्थिति है ही नहीं। तो ये तो समझ गए ना सीढ़ी को, सीढ़ी तो समझने की बहुत अच्छी है, 84 जन्मों की सीढ़ी। ये सीढ़ी शुरू कहाँ से होती है, है? सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? सतयुग से शुरू हो करके कलयुग के अंत तक पूरी होती है। 10/11/66 की वाणी का 5वां पेज। फिर सतयुग की सीढ़ी, वो तो तुम जानते हो, हम सीढ़ी चढ़े हुए थे। क्या कहाँ चढ़े हुए थे? सतयुग की सीढ़ी हम कहाँ चढ़े हुए थे? संगमयुग में चढ़े हुए थे। सीढ़ी उतरते उतरते अभी आकर के हम पट्ट में पड़े हैं। क्या पट्ट में पड़े हैं? माने दो पहलवान जब लड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक पहलवान दूसरे को उठा के पट्ट में डाल देता है। अभी फिर हम वहां से जंप करते हैं। उतरने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगते हैं। क्या धीरे धीरे उतरते और फिर चढ़ने में, जंप करने में 1 सेकंड? ये कैसे? ये 80 साल किस खाते में गए? प्रैक्टिस करने में गए तो कुछ चढ़ गए हो गए। अरे प्रैक्टिस जब इतनी 80 साल की है तो कुछ चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? तो ये भक्ति बारे में जाते हैं ढकौआ के 3 पात। एक सेकंड में तुम अभी जाते हो इस अंतिम जन्म के भी अंत में, अभी चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इस अंतिम जन्म के भी अंत में चले जाएंगे। फिर तुम राजयोग ले रहे हो जा करके शांति धाम में, सुख धाम में आ जाएंगे। क्या जा करके शांति धाम में और सुख धाम में आ जाएंगे? इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों। अभी ये दुखधाम है, सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, और शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं,
कहाँ रहती है? वृंदावन में रहती है। बाप का घर, फिर कहाँ आती है? वृंदावन से कहाँ आती है? सुविधा में कैसे आ जाएगी? सुखदाम तो पहले 100% तमो प्रधान बन गया था, जहाँ 5 तत्व भी 100% तमो प्रधान बन गए थे, तो कैसे आ जाएंगे? अच्छा, परमधाम में पहुँच के निराकारी स्टेज बनानी पड़ेगी है? इस दुनिया में आएंगे तब निराकारी स्टेज बनेगी। उसी परम ब्रह्म के बुद्ध रूपी पेट में फिर आना है। अव्यक्त मूर्ति ना, जिसके लिए गीता में बोला है कि सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जैसे परिवार है, परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो पूरा परिवार जो है वो कहाँ से जन्म लिया? जहाँ बाप से जन्म लिया वो वहाँ सत्त रूप था या नहीं था? सत्त चैतन्य सत्त जिसे कहते हैं वो था या जड़ सत्त था? चैतन्य सत्य था नहीं था? जिसे वीर्य कहते हैं वो वीर्य जब प्रकृति के संसर्ग में आया, प्रकृति माता के संसर्ग में आया, तो माता ने धारण कर लिया। जैसे फीमेल प्लक होता है, मेल प्लक होता है, मेल प्लक फीमेल में जाएगा तो मेल की सारी शक्ति फीमेल खींच लेता है, तो ऐसे ही वो धरणी माता जिसे कहा जाता है, उसने वो सत्य की शक्ति को धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? सत्य को धारण कर लिया। जिसने पूरी रीति धारण किया वो सती कही गई, जिसने पूरी रीति धारण नहीं किया, धारण तो किया लेकिन गर्भकाल में मान लो किसी दूसरे पति के साथ, व्यक्ति के साथ इंद्रियों का संबंध जुड़ गया, तो सत्य को धारण किया या असत्य हो गया? सत्य में झूठ मिक्स हो गया ना। तो ऐसे ही जो सत्य को धारण करे वो सती, और उस सती से जो पैदाइश होती है वो बहुत पावरफुल होगी। तो यहाँ भी परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म प्रकृति हुआ या पुरुष हुआ? प्रकृति हुआ। उस प्रकृति में वो आत्मा संपन्न रूप है। वो शरीर रूपी 5 तत्वों की प्रकृति में, पंचभूत रूपी शरीर में वो संपन्न आत्मा है कि अज्ञानी आत्मा है? संपन्न आत्मा है। जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, वो शरीर रूपी रथ पहले तामसी होता है या सात्विक होता है? तामसी है ना। तो तामसी रथ में उस सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। आत्मा तो है लेकिन वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। उसके संग के रंग से उसमें ज्ञान आया, मनन चिंतन मंथन हुआ। मनन चिंतन मंथन के बाद वो आत्मा ये फैसला कर पाती है कि मेरा कौन सा पार्ट है। जब ये निश्चित हो जाता है कि मेरा ये पार्ट है तो उसे दुनिया से डिटैच हो जाती है। डिटैच हो गई तो वो डिटैच हुआ जो बीज है वो ही पावरफुल बन गया। कितना पावरफुल? विश्व का मालिक बन गया। कौन सी शक्ति से? हैं? सत्य की शक्ति से। असली सती कौन सी आत्मा हुई फिर? परम ब्रह्म। क्यों? एक के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं मानी। एक का बीज ज्ञान बीज धारण किया, पहचान लिया, धारण किया, मान लिया, जान लिया, तो फिर किसी दूसरे की बात एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल। कोई कितनी भी ग्लानिंग करे लेकिन सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, तो कहेंगे सती। तो तुम सब बच्चे हो शिव की शक्तियां। नंबर वार या अव्वल नंबर? नंबर वार। फिर जिसके लिए गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, वो कौन? परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म हमारी माता भी है, और वो परम ब्रह्म जब सत्य को धारण कर लेता है, धारण करके उसका पोषण भी करता है ज्ञान का, ज्ञान के बीज का, और पोषण करके ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि बच्चा राम वाली आत्मा मैं हूँ, तो वो संपन्न स्टेज। ऐसी संपन्न स्टेज हर आत्मा को बनानी है। नंबर वार, जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। ओम शांति।